Who can translate for Mataji, Sita Thakurani Mataji? Translate for the ladies. Na, na, to, sorry, na, na to, tvam, tum, Vidarbha Duhita, Vidarbha ki putri, na, nahi, ayam, ya, bira, bir, shuhrta, hitaisi pati, tava, tumhara, na, nahi, patihi, pati, tvam, tum, puranjanaya, puranjaniki, ruddha, bandi, navamukhe, nau dwar wale sarir mein, yaya, maya se. Anuvad aur tatparch bhakti vidhan swami prabhupada. Sri prabhupada ki jai. वास्तव में न तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और न यह पुरुष मलय ध्वज तुम्हारा हितेक्षु पति है, न ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। तुम तो इस नौ द्वार वाले शरीर में केवल बंदी थे। तात्पर्य, राघव प्रभु हेडफोन है ना हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, सो मे बी यू कैन गिव द हेडफोन टू द माताजी, सो सेम ट्रांसलेशन कैन बी देयर। सबका प्राइवेट हेडफोन है, बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। इस भौतिक जगत में अनेक जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और पिता, पति, माता, पत्नी इत्यादि के रूप में संबंधित हो जाते हैं। वास्तव में एक प्रत्येक जीव की पृथक पहचान है और पदार्थ के संपर्क के कारण वह अन्य शरीरों के साथ में रहता है और झूठे ही उनसे संबंध स्थापित करता है। झूठे शरीर, परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्रीयता के नाम पर विविध संगतियां उत्पन्न करते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव श्री भगवान का अंश है, किंतु जीव है कि भौतिक देह में अत्यधिक लिप्त रहता है। श्री भगवान कृष्ण प्रकट होकर भगवत गीता तथा वैदिक साहित्य के रूप में उपदेश देते हैं। वे यह उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि वे जीव के शाश्वत मित्र हैं। ये उपदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे जीव को दैहिक व्यापारों से मुक्ति मिल सकती है। जब नदी का पानी नीचे की ओर बहता है तो उसमें किनारे के तमाम तिनके तथा शैवाल मिलते हैं, वे नदी के धारा के साथ बहते रहते हैं, किंतु जब लहरें उन्हें इधर उधर उछाल देती है तो अन्यत्र जाने लगते हैं। इसी प्रकार इस जगत में असंख्य जीव प्रकृति के लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हैं। ये लहरें कभी कभी उन्हें एक दूसरे के निकट लाती है और वे एक दूसरे से मित्रता था और एक दूसरे से परिवार, जाति या राष्ट्रीयता का वैदिक संबंध स्थापित, दैहिक संबंध स्थापित करते हैं। अंत में वे प्रकृति की लहरों द्वारा एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। यह क्रिया प्रकृति की उत्पत्ति के समय से ही चलती आ रही है। इस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है, मिछे मायार बसे याच्छवे से खाक्षहाबुडुबु भाई जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। हे जीवों, तुम प्रकृति के लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हो। कभी तो तुम ऊपर होते हो, कभी डूबने लगते हो। इस प्रकार तुम्हारा शाश्वत जीवन विनष्ट हो रहा है। यदि तुम श्री कृष्ण को पकड़कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सको तो तुम संसारी कष्टों से उबर सकते हो। इस श्लोक में सुहृत, हितैषी तथा तव, तुम्हारा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी का पति, परिजन, पुत्र, पिता, कोई भी वास्तव में हितैषी नहीं है। एकमात्र हितैषी तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता 5:29 में पुष्टि करते हैं, सुहृदं सर्वभूतानां, समाज, मित्रता, प्रेम तथा हितैषी, ये सब विभिन्न देहों के होने के फलस्वरूप हैं। लोगों को इसे जानना चाहिए और शारीरिक फंदे से, जिसमें वह जन्म जन्मांतर पड़ा रहता है, निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे और भगवान के धाम वापस जाए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः ऐमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूषु पुरुषम्। भोक्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकम् सोलं कृषिष्ठं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भावराधिका माधुरी अश्वादेशु काज, जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो यहाँ इस श्लोक में नारद मुनि जो महाराज प्राचीन बरहिषत को बतला रहे हैं, यहाँ पर जो ब्राह्मण है वह परमात्मा, जो हम लोगों का असली सुहृद है, असली मित्र है, वो परमात्मा जीव से कह रहा है। हम लोग भूल जाते हैं, हम में चार प्रकार के त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों में से एक त्रुटि है फॉरगेटफुलनेस, भूलना। भगवान हमारे साथ रहते हैं, वे कभी भूलते नहीं हैं। यही जीव और भगवान में अंतर है। भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जनमानि तव चार्जुन, तान्यहं वे सर्वाणि न त्वं वेथ परम तप। हे परम तप अर्जुन, हमारा और तुम्हारा बहुत बहुत जन्म हो चुका है। तान्य हम वे सर्वाणी, उन सब को मैं यथावत जानता हूं। न त्वम वित्थ परम तप, हे परम तप अर्जुन तुम नहीं जानते हो। भगवान कहते हैं अर्जुन को परम तप, तुम परम तप हो, सर्वशक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी इसको नहीं जानते हो। भगवान जानते हैं। उसी प्रकार से यहां पर जीव के कम दो जन्म का वर्णन यहां पर कर रहे हैं, एक पूर्व जन्म का और उसके बाद के जन्म का, और कह रहे हैं कि तुम सब सुहृद को ढूंढ रहा था। न तुम विदर्भ दुहिता, विदर्भ दुहिता विदर्भ राज की पुत्री, वहां पर भी तुम्हारे माता पिता थे जिनको तुम सुहृद समझ रहा था। उसके बाद जब तुम्हारा विवाह हुआ मलयध्वज से, तो उनको तुम सुहृद समझने लगा, अपने पति को सुहृद समझने लगा। और कहते हैं कि इसके पूर्व जब तुम पुरंजनी के साथ में थे तो पुरंजनी को अपना सुहृद समझ रहे थे, लेकिन हे जीव ये दुख की बात है, इसमें से कोई तुम्हारा सुहृद नहीं है। इसलिए परमात्मा न तुम विदर्भ दुहिता, न सुहृद, तुम्हारा कोई सुहृद नहीं है। प्रश्न उठता है कि जब भगवान सबके सुहृद हैं तो जीव क्यों संसार में सुहृद समय ढूंढता है, क्यों ढूंढता है कि हमारा कोई प्रेमी बने, हमें कोई प्यार करे, हमारा कोई देखभाल करे, इत्यादि इत्यादि क्यों ढूंढता है। और इसका कारण बताते हैं यया, यया मतलब माया, माया ही वह कारण है जिसके चलते जीव यहां पर अपना सुहृद ढूंढता है। जय श्री गौरताय की जय, हरि की जय। और सुहृदों में प्रेम ढूंढता है। इसी बात को प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाए हैं कि किस प्रकार से जीव इस संसार में आता है। एक भजन है, भूलिया तो मारे संसारो बसिया, पाए नाना विध व्याथा। कारण है इस संसार में आने का भगवत विस्मृति, संसार के बंधन का कारण है भगवत विस्मृति, और संसार से मुक्ति का कारण है भगवत स्मृति। तो विस्मृति के चलते हम लोग इस संसार में आए हुए हैं, यहां पर बंधे हुए हैं, और वह विस्मृति अपने आप खत्म नहीं होगी। वह विस्मृति अवश्य नहीं है, जन्म जन्मांतर से वह विस्मृति है, लेकिन खत्म हो सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताए हैं, मिछेर माया बसे याक्ष वेसे खाक्ष हाबु डुबु भाई। हम इस संसार के लहर में ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी ऊपर आते हैं कभी नीचे आते हैं। किसका नाक बज रहा है, बलराम तू भी डूब रहा है? तो जीव डूबता है, उतराता है माया के परवश होकर के, लेकिन यहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उसे परे होने का साधन क्या है। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। दुख का कारण है कृष्ण विस्मृति। और सुख का कारण है कृष्ण स्मृति। इसके लिए विश्वास जगाना बहुत जरूरी है। विश्वास क्या कहलाता है? भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति में कहते हैं, अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। विश्वास का हम पालन करें कि कृष्ण जरूर हमारा रक्षा करेंगे। पुनः प्रश्न था, विश्वास क्या कहलाता है? विश्वास कौन सा तत्व है? तन्नेत्र वर्णन किया गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कय सुदृढ़ निश्चय और कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। जब श्रद्धा उत्पन्न, श्रद्धा शब्दे विश्वास कय, श्रद्धा का ही दूसरा नाम है विश्वास। और विश्वास का डिफिनेशन कहते हैं सुदृढ़ निश्चय। इन निश्चयता हो जाए कि कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। सदा सदा विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति करने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्वाइन करते हैं, सही में यदि यह श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, हमें विश्वास हो जाए कि भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो अन्य कुछ नहीं ढूंढेंगे। हम लोग अन्य ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब कि हमें कृष्ण पर विश्वास नहीं है मोटा मोटी। और प्रश्न उठता है कि वह श्रद्धा कैसे उत्पन्न होता है जिससे, जिसको विश्वास कहा जाता है? तो वह श्रद्धा उत्पन्न होता है साधु संघ से। साधु संघ से श्रद्धा उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी इस्कॉन का स्थापना किए साधु संघ के लिए, जिसे श्रद्धा उत्पन्न हो। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंत हृदकर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाद अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिं भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा रतिं भक्ति अनुक्रमिष्यति, ये क्रमशः इनका विकास होता है श्रद्धा का। कैसे? सताम प्रसंगा, संतों की संगति से, साधुओं की संगति से श्रद्धा उत्पन्न होता है। साधुओं की उत्पत्ति से, संगति से, क्योंकि जब साधुओं की संगति होगी तब भजन क्रिया, आदौ श्रद्धा तो सा संगत भजन क्रिया। उदाहरण दिया गया है, ये जो एक्सपर्ट आदमी होता है गुड़ बनाता है ना, गुड़ आप लोग देखो बनाते हुए, कितने लोग गुड़ खाए हो? हाथ उठाओ कम से कम, जो लोग गुड़ खाए हो, चलो ठीक है, गुड़ तो खा लिए हो, लेकिन गुड़ बनाते देखा किसने? देखा कितने लोगों ने? अरे बहुत गांव वाले हैं भाई, तो ठीक है, शहर में नहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ कलू और नहीं हो तो अभी भी, अभी नहीं, एक दो महीने के बाद में आप हरिद्वार से आओगे दिल्ली के रास्ते में, चाहे वृंदावन आओ तो उस रास्ते में बहुत गुड़ के ये हैं। एनीवे, तो चलो हम लोग गुड़ बनाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। गुड़ बनाने वाले पहले गन्ना को कल्लू में पेरते हैं, यही ना। अब कल्लू में पेरने के बाद रस अलग आता है और उसका चेबुआ जो होता है, चर्वित चरवणा नाम, चुसा हुआ जो होता है वो अलग चला जाता है। अब जो जूस होता है उसको एक्सपर्ट गुड़ बनाने वाला क्या करता है? बताओ गुड़ बनाने वाले। हाँ, वो आग का एक बनाता है भट्टी, उस पर लोहे के कड़ाही में रखता है ना। अब इधर से आग लगाता है तो जब खौलने लगता है वो रस, तब क्या होता है बताओ? गुड़ बनाने वाले, गुड़ देखा बनते हुए हैं, वो क्या होता है कि जो रस का जो अशुद्धियां हैं वो साइड में आने लगता है। तो जो फार्मर होता है अशुद्धि को बाहर तुरंत निकालता है, वो छोड़ देगा तो गुड़ खराब हो जाएगा, तो अशुद्धि को तुरंत बाहर निकलता है। और हमें गुड़ नहीं बनाना है, हमको अपने पर प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो हम लोग जूस हैं, मान लो एक तरह से जो मिक्सचर है अशुद्धियों से भरा हुआ। अब साधु संगति रूपी आग जब प्रज्वलित होता है तो हमारी जो अशुद्धियां होती हैं वो साइड में आती है। आदौ श्रद्धा तथो साधु संगत भजन क्रिया, भजन क्रिया शुरू होता है, तब अनर्थ निवृत्ति, अशुद्धियां जो है वो साइड होती है। उसके बाद वो जो गुड़ बना देखता है, खोलता है, वो रस जो है वो खोलने लगता है, और जब खोलता है तो उसके कलर में परिवर्तन हो जाता है। चतुर्भुज हंस रहे हैं क्योंकि गांव में गुड़ बनता है। तो खोलने से क्या होता है कि उसका कलर परिवर्तित होने लगता है। जो पहले जूस होता है उसमें मिट्टी और अशुद्धियां होती है, तो एक तरह से काला काला दिखाई पड़ता है, लेकिन बाद में उसमें पीलापन आने लगता है। तो भौतिक संसार में हम लोग भी थे, बड़ा बड़ा बाल रखे थे, दाढ़ी रखे थे, मूंछ रखे थे, हैं, साल में एक बार नहाते थे, गंदगियां से फैली हुई थी, हैं। तो साधु संग होने से धीरे धीरे सफाई करते हैं, बाल सेविंग करा लेते हैं, वो तो सफाई पहले से तो थोड़ा तो परिवर्तन दिखाई पड़ता है ना। पहले देखने में कैसे लग रहे थे, अभी देखने में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। हालांकि शुद्धि नहीं हुई है, केवल रंग बदला हुआ है। पहले काला रंग था, थोड़ा अभी पीला पीला हो रहा है, लाल लाल हो रहा है। तो गुड़ जो बनता है, जो रस होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन उसमें आता है वैसे उसमें पीलापन आने लगता है। पीलापन शुद्धता का घोतक है। तो हम लोगों की जब अशुद्धियां दूर होने लगती है तो हम लोगों में पीलापन आता है। पीलापन मतलब अंग्रेजी में से इमोशन कह सकते हैं। हरदास अब इमोशन में हो लगता है, इमोशन होता है तो खूब नाचते हैं, गाते हैं खूब। आप देखोगे जिसमें जब पीलापन होता है तो वह रस जो होता है बुम 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 ऊपर नीचे जाता है, वो पीला जो होता है ना खूब ऊपर नीचे जाता है, वो इमोशन होता है। तो हम लोग भी नया भक्त बनते हैं, खूब नाचते हैं गाते हैं, इमोशन उत्पन्न होता है। बाद में वह बबल टूटने लगता है तो स्थिरता को प्राप्त करता है। तो एक्सपर्ट जो होता है गुड़ बनाने वाला, वो पहले थोड़ा लिखता है, देखता है, पानी पहले डालेगा, पानी डालेगा या उसको निकाल करके उसको पानी में डालेगा, नहीं नहीं पानी में डालेगा, पहले देखेगा इसमें लसा जैसे, नहीं नहीं वो लास्ट में है, वो लास्ट में है, नहीं नहीं वो लास्ट में है, पहले पानी में डालेगा। जब पानी में डालेगा और देखा कि पानी में अब ये पानी को स्पर्श नहीं कर रहा है, यानी पानी को अबे छोड़ दिया है, तब समझ जाएगा अब इसमें पानी नहीं रह गया है। पहले तो गंदगी सफाई किया जब ही बाहर आया, उसके बाद पानी खत्म हो गया बबल के द्वारा ऊपर नीचे होते होते पानी खत्म हो गया, तो समझ गया कि अब ये जो गुड़ है वो गुड़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है, यानी इसमें पानी नहीं है। यदि तुरंत उसको उतार दिया जाएगा वैसे ही तो गुड़ का फॉर्म नहीं, शेप नहीं बना पाएगा, तो कुछ समय और उसको जलाते हैं, खौलाते हैं। उसके बाद में जब उसमें स्टिकनेस आ जाएगा तब समझा कि हाँ अब एक गुड़ बनाने के योग हो गया है। तो स्टिकनेस का मतलब रति, जब भगवान में रति उत्पन्न हो जाए, भगवत कथा सुनने में, भगवान का नाम जप करने में रति उत्पन्न हो जाए, तब उसके बाद कैसे आदौ श्राद्ध साधु भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि, उसके बाद निष्ठा भाव, भाव ना भाव के बाद रति आ जाता है। एनीवे तब वो गुड़ वाला बेचारा उतार देता है उसको ठंडा होने के लिए, और बाद में इतना बड़ा बड़ा गुड़ का ये बनाता है। एनीवे, लेकिन शुरू हुआ था कैसे? आग के संग से खौलना। तो साधु के संग से जब भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है तब श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक श्रद्धा जो हमारे सुकृति से प्राप्त होता है, पूर्वजन्म भजन किए थे या बाप माँ का संस्कार प्राप्त हुआ तो उससे एक श्रद्धा उत्पन्न होती है और उस श्रद्धा के चलते हम साधु के संग में आते हैं, वह श्रद्धा हमको साधु संग तक लाता है। और जब साधुओं की संगति में भजन करने लगते हैं तो ये दूसरी श्रद्धा उत्पन्न होती है, प्रगाढ़ श्रद्धा। तो इसी श्रद्धा को रूप गोस्वामी कहते हैं आदो श्रद्धा, या कपिल देव कहते हैं कि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, या भक्ति विनोदाचार्य कहते हैं कि अब श्रद्धा शब्द विश्वास कह सुदृढ़ निश्चय, निश्चयता प्राप्त होती है उस साधुओं की संगति से। सो पतित जीव को, जो जीव यहां पर आ गया है, इस प्रकार से श्रद्धा की प्राप्ति होती है। और वही श्रद्धा जब प्रगाढ़ हो जाती है, रति प्राप्त कर लेती है, तो वैसे श्रद्धा को सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा कहते हैं। उस श्रद्धा में अब कोई जैसे हरिदास ठाकुर या अन्य जितने भक्त हैं उनमें सुदृढ़ निश्चयता हो गई है कि कृष्ण जो माधवेन्द्रपुरी रूप सनातन, उनको सुदृढ़ निश्चयता है कि कृष्ण जरूर हमारा पालन करेंगे। वे लोग अपने भरण पोषण के लिए कोई चिंता नहीं करते हैं, लेकिन शुरू होता है साधु संघ से। साधु संघ, हरिनाम, भगवत कथा, ये सब उसके साधन है। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। जीव इस संसार में आता है भोगने के लिए, चाहता तो है सुख भोगना, लेकिन संसार में सुख है नहीं। जब यहां पर आता है तो आते ही जो संसार में है वो उसे प्राप्त होगा। संसार में जो वस्तुएं हैं वो टेम्पररी है। इस संसार का स्वरूप है दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन जीव जो है इसके विपरीत है बिल्कुल। जीव कैसा है? शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। उसे सब कुछ परमानेंट चाहिए, टेम्पररी नहीं चाहिए, लेकिन वो टेम्पररी से दोस्ती कर लेता है। और वही जीव के अणुता का परिचय है कि जीव माइन्यूट है, जीव अंश है, इसलिए वह टेम्पररी के साथ भी वह दोस्ती कर लेता है। जीव है शाश्वत, लेकिन टेम्पररी के साथ में वह दोस्ती कर लेता है। अब यह दोस्ती कैसे चलती है, यहां पर उदाहरण दिया गया है कि नदी की धारा बह रही है। अब वहां से नदी के किनारे पेड़ पौधे हैं, घास इत्यादि है, तो कभी कभी पेड़ के पत्ते, घास इत्यादि सब नदी के पानी में गिर जाते हैं। दोनों बह रहे हैं, लेकिन नदी का एक धारा आता है जो सबको एक साथ ला जाता है। हम लोग कहते हैं साथ लग गया, साथ लग गया, क्या हो साथ लग गया, भ्रंश है, वो साथ में आते हैं, साथ में आते हैं। और नदी का दूसरा धारा जो आता है वो आकर के उनको अलग कर देता है। जीव कुछ समय के लिए, वह जो साथ लगा हुआ था केवल कुछ समय के लिए, एक धारा साथ में लाया, कुछ समय साथ में थे, दूसरा धारा अलग कर दिया। उसी प्रकार से इस संसार में हम लोग आते हैं, साथ लग जाते हैं, एक साथ में पति पत्नी के रूप में, माँ बाप के रूप में, समाज के रूप में, फ्रेंड के रूप में, राष्ट्रीयता के रूप में, जाति के रूप में, इत्यादि इत्यादि। और समझते हैं कि ये सब हमारे सुहृद हैं, ये सब हमारे हितैषी हैं, ये हमको सुख देने वाले हैं। सुहृत, सु मतलब सुंदर और हृत मतलब हितैषी, सुंदर हितैषी। अरे ये वह कैसा हितैषी है जो पास्ट को जानता नहीं है, फ्यूचर को समझता नहीं है, फ्यूचर को जानता नहीं है, पास्ट को भूल गया है, वर्तमान में स्वयं स्ट्रगल कर रहा है, वो कैसा हितैषी हो सकता है? हितैषी वही हो सकता है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जाने। हितैषी के दो गुण हैं, एक गुण यह है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जाने। दूसरा गुण है कि उस हितैषी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो जिसमें ये दोनों हो वही व्यक्ति हमारा हितैषी हो सकता है। ये फॉर्मूला है हितैषी का, ये परिभाषा है। इस परिभाषा के ऊपर हम लोग जज करें अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने समाज को। हितैषी का परिभाषा क्या है? हाँ, दूसरा, हाँ, दो परिभाषा है, दो, एक जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानता है और दूसरा जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो। हम समझते हैं कि हमारे बाप माँ हितैषी, चलो पहला हितैषी बाप माँ है, चलो उनको लेते हैं। अरे श्यामपुर, बाप माँ को ऐसे समझते हैं, चलो बाप माँ, क्या वे लोग वास्तव में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानते हैं? कुछ दिनों का पास्ट उन्हें याद होगा, प्रेजेंट इतना ही जानते हैं कि मैं तुम्हारा बाप माँ हूं और तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा हितैषी, और फ्यूचर को कुछ जानते ही नहीं। तो यह प्रमाणित करता है कि वे हितैषी नहीं हो सकते हैं। स्वार्थ, सब बाप मां को स्वार्थ है, कोई निस्वार्थी नहीं है। अरे आजकल के बाप मां तो इतने स्वार्थी हैं कि जन्म भी नहीं लेने देते हैं, गर्भ में ही मार डालते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जन्म लिया भी, पालन पोषण भी किया, उसमें भी स्वार्थ है। बुढ़ापा हो गया बाप मां को, बच्चे बाप मां का सेवा नहीं करते हैं तो सब जगह ढिंडोरा पीटते हैं कि इसके लिए मैंने ये किया, हमारा कुछ नहीं कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, स्वार्थ। इसलिए यही तैसी नहीं हो सकते हैं। पति, पत्नी समझती है कि हमारा पति हमारा ही तैसी है। पति तब तक हितैषी है जब तक से हम पति को इंद्रिय तृप्ति सप्लाई कर रहे हैं, या पत्नी तब तक हितैषी है जब तक से हमें इंद्रिय तृप्ति सप्लाई कर रही है। जैव इंद्रिय तृप्ति में बाधा आया, डिवोर्स, तो हितैषी कहां हुए? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानते नहीं है। और ये जितना रिलेशनशिप है यह इंद्रियों पर निर्भर है, ये इंद्रियों पर आधारित है, इसलिए ये लोग हितैषी हो नहीं सकते हैं। इसलिए नारद मुनि स्पष्ट कहते हैं, न सुहृतः तव, ये सब आपके हितैषी नहीं है महाराज, आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? इनडायरेक्टली प्राचीन वरिष्ठ को ये कह रहे हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह जीव समझता है अपने दो जन्मों के हितैषियों को, कहते हैं ये हितैषी नहीं है तुम्हारे, परमात्मा के द्वारा कहवा रहे हैं, परमात्मा कह रहा है ये हितैषी नहीं है। जो असली हितैषी है वो साथ में रहता है, ये बीच में आए हुए हैं जो दिखाई पड़ते हैं कि हितैषी हैं। कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो बीच की वस्तु को सत्य मानता है, जो बीच के वस्तु को सत्य मानता है वो सबसे महामूर्ख है। सत्य प्रतीत होता है लेकिन सत्य है नहीं। मैं उदाहरण दिया करता हूं स्वप्न का। स्वप्न, हम स्वप्न देख रहे हैं, खूब कीर्तन हो रहा है, उसमें नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नहीं, खैर ये ट्रांसडेंटल है, वो सपना में भी काम करता है, कीर्तन सपना में भी काम करता है, सपना में भी हरे कृष्ण गा लो, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम, वो काम करेगा। लेकिन इंद्रिय तृप्ति की कोई वस्तु सपना में देखो, मान लो रसगुल्ला खा रहे हो, हमें मिठाई अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलता हूँ, रसगुल्ला खा रहे हो ठीक है सपना में, अब रसगुल्ला खा रहे हो तो रसगुल्ला का आप आकार देख रहे हो व्हाइट है सपना में, उसमें जूस भी है वो भी देख रहे हो, किसका बनाया हुआ वो भी जान सकते हो, उसमें स्वाद कैसा है वो भी पता चल जाता है। रसगुल्ला का यथावत ज्ञान सपना में हो जाता है, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसा रसगुल्ला होता है देखने में स्वाद में सब प्रकार से ठीक वैसा ही उसमें वो है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है कि भैया सोने से पहले तो मैं रसगुल्ला रखा नहीं था, हो सकता है मैं सो रहा था कोई लाकर मुंह में डाल दिया होगा दिखा करके पहले, तो वो भी प्रमाण मान लो कि कोई डाल दिया होगा। लेकिन जब मैं जगा तो ना तो वहां कटोरी है ना जूस है ना चम्मच है ना कहीं गिरा हुआ कुछ भी है, तो सोने से पहले भी नहीं था, सोने के बाद में भी नहीं है और उठने के बाद भी नहीं है, बीच में दिखाई पड़ा था और एजिटी दिखाई पड़ा था, कोई सत्य मानता है? कहते हाँ भाई सपना देखा कि मैं रसगुल्ला खा, इतना ही कह सकते हैं। तो यदि हम यह कहते हाँ मैं सपना देखा था कि मेरी पत्नी है मेरे बच्चे हैं परिवार है, वो ठीक है उतना तक ठीक है, लेकिन कोई उसको सत्य मान करके उसके लिए रोना शुरू करे तो मूर्ख नहीं तो और क्या है। तो भौतिक संसार मिथ्या नहीं है, ये अशाश्वत है यानी परिवर्तनशील है। सोए थे रसगुल्ला खाए देखे सब स्वाद आया, लेकिन जगह तो नहीं है, परिवर्तन हो गया उसमें, परिवर्तनशील है, ये मिथ्या नहीं है, वो रसगुल्ला मिथ्या नहीं था दिखाई पड़ा। इसलिए इत भौतिक संसार का जो भी संबंध है, प्रभुपाद जी यहां पर उदाहरण दिए हैं नदी और पानी वाला है, जब नदी का पानी नीचे की ओर बहता है तो उसके किनारे तमाम तिनके वही घास पत्ते मिल जाते हैं साथ लग जाते हैं, तो ये बीच में लगे हुए हैं, जन्म लिए थे उससे पहले नहीं थे, ये देह भी नहीं था, बाप मां तो छोड़ो ये देह भी नहीं था, और मरने के बाद न तो ये देह रहेगा और न बाप मां, ये बीच में दिखाई पड़ रहे हैं, बीच में मिले हुए हैं, और जो बीच में मिले हो को सत्य मान करके रोता है और हंसता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ये सत्य बात है, ये सत्य है, लेकिन पता नहीं ये सत्य अंदर जाता क्यों नहीं है। सत्य तब अंदर जाएगा जब श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी तब सत्य वस्तु अंदर जाएगा। श्रद्धा यदि ना हो और कोई मुंह फाड़ फाड़ कर बोले कि मैं सत्य बोलता हूं सत्य बोलता हूं सत्य बोलता हूं तो अभी विश्वास नहीं करेंगे। जब श्रद्धा होगी तो झूठ को भी हम सत्य मानते हैं, श्रद्धा होगी तब। तो श्रद्धा बहुत जरूरी अवयव है किसी वस्तु को स्वीकार करने के लिए। हम श्रद्धा के साथ ही स्वीकार कर लिए हैं मॉडर्न थ्योरी को, बिग बैंग थ्योरी, इसको लो हम लोग स्वीकार किए हैं ना। किस प्रकार से शास्त्र कहता है कि कैसे प्राणी संसार में आया और बिग बैंग थ्योरी एक अलग है, है? और आजकल के बच्चे उसी को मानते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा जो है उसके प्रति है। यदि उन बच्चों को श्रद्धा यह दिया जाए, वैदिक संस्कृति का श्रद्धा दिया जाए, तो ये बच्चे वैदिक संस्कृति का पालन करेंगे। तो यह ये जरूरी है इस श्रद्धा को देने का, और श्रद्धा तब प्राप्त होता है जब साधुओं की संगति होगी। तो जाकर के लोगों में बताने का जरूरी है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट के जितने भक्त हैं उनको जाकर के पुस्तक वितरण करना चाहिए, लोगों में बतलाना चाहिए कि भैया संसार में सुहित तुम्हारा यदि कोई है तो वे हैं भगवान। ए धन जौवन पुत्र परिजन इच्छे के आछे पर तीति रे, कमल लदल जला जीवन अठल मल भजा हूँ ए हरि पद नीति रे। भैया ये तुम्हारा जवानी, ये तुम्हारा पुत्र, ये तुम्हारा परिवार, इच्छे के आछे परतीति रे, क्या विश्वास है, कोई काम नहीं करेगा समय पर। कमल दल जल जीवन ठल मल, कमल के पत्ते पर पानी ठल मलाता है, कभी गिर सकता है, वैसे ही आत्मा कभी छोड़ सकता है। जब शरीर को छोड़ देगा तो शरीर के संबंध अपने आप छूट जाते हैं, इस बात को बताने की जरूरत है। तो असली सुहृद यदि कोई है तो वे हैं भगवान, जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के सुहृद जो हैं भगवान हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के लास्ट में कहते हैं इस श्लोक में सुहृद तथा तव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण वेल विशर कृष्ण योर बेस्ट वेल विशर। जब हम माने तो भी हमारे साथ थे, न माने तो भी हमारे साथ थे, कितने सुंदर वेल विशर हैं। इस संसार में जो कहता है कि वेल विशर हूं उसको दो चार दस गाली दे दो, वो कभी नहीं आपके आपको देखेगा भी नहीं, चाहे गुरु हो चाहे कोई, हमने चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे कोई हो। वेल विसर मतलब जो हमेशा उसके साथ रहे। प्रभुपाद जी एक बार एक भक्त थे कीर्तनानंद, प्रभुपाद जी उनको संन्यास दिए और संन्यास के बाद वो गए प्रचार करने के लिए, तो पता नहीं अपना वो कुछ नया रंग बना लिए। प्रभुपाद जी उनका सफरन पहनाकर भेजे, वो जाकर काला पहन लिए, काला पहन कर दूसरा कुछ प्रचार करने लगे। प्रभुपाद जी को बहुत दुख था, लेकिन प्रभुपाद जी घृणा नहीं किए। जब कीर्तनानंद पुनः आए तो प्रभुपाद जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, प्रभुपाद जी रो रहे थे कीर्तनानंद के लिए। क्यों? ये है असली सुहृद का लक्षण। प्रभुपाद जी सुहृद हैं, शिष्य गुरु को नहीं मानता है कि एक बार, लेकिन गुरु हमेशा यही चाहता है कि उसका आत्मकल्याण हो, कैसे कल्याण हो सके। तो भगवान और भगवान के प्रतिनिधि असली सुहृद हैं। किसी का पति परिजन पुत्र पिता कोई भी वास्तव में हितैषी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हितैषी नहीं हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कब, यदि कृष्ण भावना भावित हो जाए तब। किसी का पति कृष्ण भावना भावित है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन गाए हैं, उस भजन में कहें कि हे कृष्ण ये जो पत्नी मेरी है वो आपकी है, ये संतान हमारे सब आपके हैं, सब आपके हैं इसलिए मैं इनका देखभाल कर रहा हूं, यदि आपके नहीं होते तो कुछ भी लेना देना नहीं मुझसे, ये आपके हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित होता है वो समझता है ये पत्नी मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये कृष्ण की है, ये संतान जो है मेरे नहीं है कृष्ण के हैं, और हैं भी कृष्ण के, यही सत्य है। तो यदि पति परिजन पुत्र पिता ये सब कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो वे लोग असली हितैषी हैं। इस बात को मिसकोट नहीं करना चाहिए, एक शास्त्र में लिखा है कि बाप माँ हमारे हितैषी नहीं है इन लोग छोड़ दूंगा, ऐसा बात नहीं है। यदि वो कृष्ण भावना भावित न हो तब पिता न सस्यात जननी न सास्यात, वह बाप बाप नहीं है, वह माँ माँ नहीं है, जो कि अपने डिपेंडेंट को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा न दिला दे। लेकिन जो डिपेंडेंट को छुटकारा दिला सकता है वो तो सत्य है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका पूजा करना चाहिए। तो असली हित ऐसी वही है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छुटकारा दिला सके। तो भगवान और भगवान के भक्त ही एकमात्र असली हित ऐसी हैं। प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का शरण गढ़ें और भगवान के धाम वापस जाएं, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। जन्म लाभ परापुंसा अंत नारायण स्मृति अंत में नारायण का स्मरण हो जाए और भगवत धाम को हम प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन की सार्थकता है। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, साधुओं के साथ संगति कर करके, भजन क्रिया कर करके, अनर्थों से निवृत्त होकर के रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, निष्ठा उत्पन्न करनी चाहिए, रति उत्पन्न करना चाहिए, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहिए और इस प्रकार से भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो असली सूरत है वे भगवान हैं, न कि ये पत्नी पुत्र परिवार इत्यादि। तो न त्वम विदर्भ दुहिता नायम, विदर्भ दुहिता कहने का मतलब कि विदर्भ दुहिता, विदर्भ की पुत्री जो वो समझते हैं उसके बाप माँ, विदर्भ राज उसके सुहृत हैं, तुम समझते हो कि वह सुहृत है, न तो उसका हस्बैंड यह पुरुष मलयध्वज, और न तो पहले जन्म में जो पुरंजनी जो थी, नौ द्वार मुखे या नौ द्वार पूरे, यहां पर नौ द्वार मुखे आया हुआ है, नौ द्वार है इस देह में है? दो आंख दो कान है? कितना हो गया, चार, और दो नाक छह हो गया, और क्या बोल रहा हूं, और एक मुंह हो गया, कितना हो गया, सात, और देन नीचे है मलमूत्र द्वार, हो गया नौ, नौ। तो ये नौ द्वार है, ये नौ गेट है। आप लोग समझ सकते हो कि देह किस वस्तुओं से बना हुआ है, एक सेकेंड आंख बंद कर लो, सोने के लिए नहीं, समझने के लिए, और सोचो कि ये नौ द्वार से निकलता क्या है, कान से क्या निकलता है, आंख बंद करके ध्यान करो आप लोग, अरे आंख बंद करो है? कान से क्या निकलता है, गंदगी, राइट, आंख से क्या निकलता है, आंसू और कीचड़, नाक से क्या निकलता है, देसी घी, नहीं अब है डालडा है, और मुंह से क्या निकलता है, कफ बात, कफ इत्यादि, और मलमूत्र द्वार तो आप जानते हो, इससे तो कोई सबको परिचय है क्या निकलता है, उसका नाम ही मलमूत्र द्वार। तो इन वस्तुओं से बना हुआ है, और इसका पैकेजिंग कितना भगवान सुंदर किए हैं, भगवान के समान कोई पैकेज नहीं कर सकता है, फर्स्ट क्लास पैकेजिंग भगवान करते हैं। देखो ना, ऑरेंज, यहाँ एक ऑरेंज जूस बोलो गोविंदा वालों को, एक ऑरेंज जूस पैक कर कर दे दो, एक ऑरेंज जूस पैक कर कर देगा, प्लास्टिक में फट जाएगा, कहीं पर गिर जाएगा है? और भगवान ऑरेंज जूस एक बैग में पैक किए हैं, ऑरेंज जूस, ऑरेंज में, ऑरेंज कहाँ, नागपुर तरफ कहाँ बनता पैदा होता है, वहाँ से ऑल ओवर इंडिया जाता है, न सड़ता है न खराब होता है, फर्स्ट क्लास कराता है, यहाँ जूस बनाओ भेजो खराब हो जाएगा, भगवान कितना फर्स्ट क्लास पैकेजिंग करते हैं। वैसे ही देह का कितना सुंदर पैकेजिंग भगवान किए हैं, ये देह के अंदर हड्डी मांस खून मल मूत्र इत्यादि सब भरा हुआ है, लेकिन चमड़ा रूपी पैकेजिंग से फर्स्ट क्लास पैकेजिंग कर दिए हैं, कितना अच्छा लगता है, इसके लिए मर रहे हैं एक दूसरे के लिए है? ये पैकेजिंग चमड़ा का ही है ना, और क्या है, ये चमड़ा निकाल दिया जाए, ये जल जाए, हाथ पर जल जाए कहीं पर, देखो क्या दिखाई पड़ता है अंदर, हाथ के चमड़ा थोड़ा निकल जाए तो क्या दिखाई पड़ता है, गिन गिन हाथ बढ़ने लगती है, कोई इस पास जाएगा भी नहीं, या किसी कोड़ हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या साइंटिस्ट लोग पैकेजिंग मटेरियल बनाएंगे, चमड़ा बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे, भगवान कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। तो भगवान ही सबके सुहृद हैं, यह जो जान जाएगा वह व्यक्ति सुखी होगा। लेकिन यदि बंधन यदि है तो दो बंधन है इस श्लोक में बताया गया है, एक रुद्धौ, रुद्धौ का मतलब होता है बंधन, कहते हैं अवरोध, स्पीड ब्रेकर को अवरोध कहते हैं है? रुद्धौ मतलब बंदी बनाने का जो वस्तु है वह दो है, एक है ये देह और दूसरा है माया। देह और माया के चलते जीव बंधन में फंस जाता है, और देह और माया का जो बंधन है यदि कोई छुड़ा सकता है तो हमारा सुहृत छुड़ा सकता है, और सुहृत कौन है? गुरु या कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, क्वेश्चन और कमेंट? बहुत लिखा था लेकिन कुछ नहीं है, अभी आगे बढ़ा भी नहीं इधर। कोई प्रश्न किसी को? चलो ठीक है, पैकेजिंग करने चलो, प्रसादम खाना भी पैकेजिंग करना है। हाँ क्या बात है? ठीक है, नहीं बड़ी हरादास का प्रश्न है, माइक दो, माइक दो। हाँ हरादास कुछ गाना चाहते हैं, गाओ गाओ।
इसमें लिखा पता नहीं, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांसम सुनितम लेपितम चरमाबद्धम दुर्गंधम मलमूत्र परिचय हो।
उसका अर्थ
अस्थि स्तंभम, जैसे खंभा बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे हड्डियों के खंभा है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, स्नायु के द्वारा बंधा हुआ है। स्नायुबद्धम मांसम सुनितम लेपितम, मांस खून ऐसे ऐसे थापना कराया गया। चरमाबद्धम ऊपर में चमड़ा लगा गया,
पैकेजिंग किया गया,
पैकिंग। दुर्गंधम अंदर गंदा चीज, मूत्र परिचय हो ऐसा है।
वो पूरा पैकेजिंग में क्या क्या डाला गया बता दिए हैं, अंदर क्या क्या, चमड़ा तो ऊपर से है ना, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है, किन किन वस्तुओं से पैकेज किया गया, राइट? मांस हड्डी, हड्डी सपोर्टिंग है, खंबा है। और कोई प्रश्न? विष्णु क्या देख रहा है, चेक आ गया क्या तुम्हारा? विष्णु आजकल चेके का सोच रहा है सुबह से रात तक। ऑल राइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु।